ये आकाशवाणी है, अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में कल गुजरात शहरी विकास की 20 वर्ष की गाथा के उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने पर गर्व व्यक्त किया।
एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं दोस्त।
ऑपरेशन सिंदूर के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अपने मूल दायरे से आगे बढ़ेगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का भारत का संदेश। सीमा पार से आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विश्वभर में भेजे गए भारत के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में नेताओं, सांसदों, बुद्धिजीवियों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ उनकी बातचीत में गूंज रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां की संसद के अध्यक्ष डैना कास्टानेडा से बातचीत की। इस दौरान श्री थरूर ने कहा कि भारत को युद्ध छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि आतंकवाद से जुड़ी हरकतों का उचित दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में शिष्टमंडल दल दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। इस मंडल के सदस्य आज केप टाउन जाएंगे, जहां वे दक्षिण अफ्रीका की संसद में बैठक करेंगे। भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में 81 अरब 4 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। ये वित्त वर्ष 2023-24 के 71 अरब 28 करोड़ डॉलर के तुलना में 14% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी है। सरकार ने निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियां लागू की हैं। इससे अधिकांश क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 100% मार्ग खुल गए हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बयान में कहा गया है कि आईटीआर फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन और लोगों को आवश्यक दस्तावेज हासिल करने का समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कल से शुरू होगा। इस देशव्यापी अभियान का शुभारंभ ओडिशा के पुरी में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगा। ये अभियान 12 जून तक चलेगा और इसमें देश के 700 से अधिक जिलों को शामिल किया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मॉनसून सीजन में देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा मौसमी औसत से अधिक रहने की संभावना है।
देश के लिए एक खुशखबरी है, वर्षा सामान्य से ज्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर का क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो देखें। सिमिलरली जून महीने की बात करें, जून महीने में भी एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है और हीट वेव कंडीशंस भी बिलो नॉर्मल होने का संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर जी के समर्पण भाव को डिगा नहीं पाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के आंदोलन में वीर सावरकर के अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। अमेरिका ने विद्यार्थी आवेदकों के लिए वीजा के नए साक्षात्कार को रोकने के आदेश दिए हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय को ऐसे ही निर्देश दिए हैं। ट्रंप प्रशासन आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को कड़ाई से जांच करने पर विचार कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कल ग्रुप स्टेज में के अंतिम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में दूसरे, जबकि पंजाब किंग्स शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। कल पहले क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे, जबकि शुक्रवार को एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दूसरा क्वालिफायर मैच 1 जून को और फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। इसके अलावा सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज भी पहले दौर के मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।